आस्था कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अरमान का हाथ उसके मुंह पर होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो केवल अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कन्फ्यूजन लिए अरमान को घूर रही थी। फिर अरमान ने कहा, तुम्हारे मुंह पर अब क्या ताले लग गए हैं? बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो, मेरी बातों का जवाब दो। आस्था बार बार अपनी पलकें इधर उधर करके अरमान को ये बताना चाह रही थी कि उसका हाथ उसके मुंह पर रखा हुआ है तो वो कैसे बोल सकती है, लेकिन अरमान उसे बार बार बोलने के लिए कह रहा था और अपना हाथ उसके मुंह पर से हटाना भूल गया था। अरमान को समझ में ही नहीं आया कि आस्था बोलेगी कैसे, उसने तो उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। यहाँ आस्था अपनी आंखें दिखा दिखा कर थक गई और चिड़चिड़ा हो गई। उसने अरमान के उस हाथ पर, जिससे उसने उसका मुंह दबा रखा था, हल्का सा काटा। दर्द के कारण अरमान ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा लिया। अब जैसे ही आस्था ने अरमान के हाथ में काटा, अरमान गुस्से से और भी ज्यादा आग बबूला हो उठा। उसने आस्था की ओर देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया को काटने की? अरमान के हाथ हटाए जाने पर आस्था गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, हम आपको कब से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमारे मुंह पर हाथ रख रखा है तो हम कैसे बोल सकते हैं? वो उसे घूर कर देखने लगी, सोचने लगी कि अगर वो हाथ नहीं हटता तो वो बेहोश ही हो जाती। अब जैसे ही आस्था ने बड़े ही मासूम और भोलेपन से ये कहा, एक पल को अरमान उसकी मासूमियत में पूरी तरह से खो गया, लेकिन अगले ही पल अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए सख्त लहजे में बोला, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो, जाओ जाकर कपड़े बदल करो और फटाफट से दादाजी से मिलने के लिए मेरे साथ चलो। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना कि दादाजी आ गए हैं और वो उसे बुला रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो गई। उसे अरमान के साथ अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये सुनकर कि दादाजी और बाकी सब लौट आए हैं, वो खुश हो गई और बोली, क्या वाकई दादाजी आ गए? हमें भी उनसे मिलना है। ऐसा कहकर आस्था जैसे ही दौड़कर उसके बगल से जाने लगी, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तुम इस तरह से दादाजी के पास नहीं जा सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे सारे कपड़े भीगे हुए हैं? क्या तुम इस तरह से दादाजी के सामने जाओगी? जाओ जाकर कपड़े बदल करो पहले। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था सर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। अब तो अरमान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। क्या ये लड़की पागल हो गई है? क्या इसे अरमान की बात सुनाई नहीं देती? ये इस तरह से उसकी बात कैसे टाल सकती है? तब अरमान गुस्से से कदम बढ़ाकर उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, नजर उठाकर मेरी आंखों में देखो और बताओ, इस तरह से सर झुकाकर क्यों खड़ी हुई हो? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बोला, जाओ जाकर पहले अभी इस वक्त कपड़े बदल लो, उसके बाद दादाजी से मिलने जाओ। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है, या तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती हो? तब आस्था ने सर झुकाए हुए बड़ी ही धीमी आवाज में जवाब दिया, जी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं। जो नानी माँ ने कपड़े भिजवाए थे वो केवल दो तीन ही जोड़ी कपड़े थे, और जो कपड़े हम पहन चुके हैं वो सब हमने धोने दिए हैं, लेकिन वो अभी तक सूखे नहीं हैं। और ये कपड़े जो हमने पहन रखे थे, ये आपने गीले कर दिए, तो हम कपड़े कैसे बदलें? अब जैसे ही आस्था ने बड़े ही भोलेपन से ये सारी बातें कहीं, अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा और वो माथे पर लगातार हाथ फेरने लगा। फिर कुछ सोचकर अरमान बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी? बेवकूफ लड़की, तुम्हें नींद से जगाने के लिए मैं ऐसा नहीं करता। अरमान दांत पीसते हुए आस्था को घूरने लगा, लेकिन आस्था तो डर के मारे एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी, मानो उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो और वो इस वक्त अरमान की अदालत में खड़ी हुई हो। अरमान जल्दी से अपने कमरे की अलमारी की तरफ गया और वहां जाकर उसने ढेर सारी साड़ियां देखी। उन साड़ियों को देखकर आस्था की तरफ मुड़कर सख्त अंदाज में पूछा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, लेकिन यहाँ तो पूरी अलमारी तुम्हारे कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। क्या तुम्हें कल ये साड़ियाँ अलमारी में नजर नहीं आई? अब आस्था की नज़र भी उन फैंसी और महंगी साड़ियों पर गई, लेकिन आस्था ने तो कभी साड़ी पहनी ही नहीं थी। फिर वो बताने लगी कि उसने ये सारे कपड़े और साड़ियाँ शादी की रात ही देख लिए थे, लेकिन वो कहते हुए रुक गई। तब अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, लेकिन क्या, अगर तुमने ये कपड़े देख लिए थे तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? आस्था डरकर बोली, जी हमें ये साड़ियाँ पहननी नहीं आती हैं। जैसे ही अरमान ने यह सुना, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सामने खड़ी ये लड़की उसके धैर्य का काफी हद तक इम्तिहान ले रही थी। अरमान गुस्से से आस्था की ओर देखकर बोला, पता है इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाकर तुम्हारी जान ले लूं। क्या सच में तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती है? तब आस्था ने एक बार फिर अपनी गर्दन मासूमियत से हिला दी। तब अरमान ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरत से फैल गईं। धन्यवाद।